Market Monster. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444 and 2342-1050. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
नमस्कार मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है. हम आपके लिए लेकर आए शेयर बाजार से जुड़ी खबरें और व्यापार जगत की हलचल के बारे में आपको देंगे जानकारी. आज सोमवार है और आप अपनी आर्थिक जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमें फोन कर सकते हैं. हमारे विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे. आप हमें 2331-4444 और हमारे दूसरे नंबर 2342-1050 पर कॉल कर सकते हैं. दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें. और श्रोताओं, आपके प्रश्नों का उत्तर देने तथा आर्थिक खबरों पर चर्चा आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार राजीव रंजन झा. राजीव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
जी नमस्कार.
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं वैभव.
वी बिगिन विद द हेडलाइंस. सेंसेक्स एंड निफ्टी हिट. Sensex and Nifty hit new all-time highs. Nifty peaked at an intraday high of 23,110, while Sensex surged to 76,009. Gold and silver in domestic and international markets trade positive. Gold was up by 501 rupees. And crude markets awaits OPEC Plus meeting on the 2nd of June. Brent crude was up 0.27% to $82.36 per barrel.
घरेलू शेयर बाजार नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे. दिन के कारोबार में सेंसेक्स 76,009 और निफ्टी 23,110 अंक तक पहुंचे. सोना और चांदी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चमके. सोने में 501 रुपए की बढ़त और तेल बाजार को 2 जून को होने वाली ओपेक प्लस बैठक का इंतजार. कच्चे तेल की कीमत $82.36 प्रति बैरल. भारतीय घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आज नई सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गए, जो चुनाव के अनुकूल परिणामों की आशा जैसे घरेलू कारणों तथा कच्चे तेल की कम कीमत और वैश्विक बाजार में आशावाद जैसे अंतर्राष्ट्रीय कारकों से प्रेरित है. दिन के कारोबार में आज निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर यानी 23,110 पर आ गया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक उच्चतम स्तर 76,009 अंक पर पहुंच गया. हालांकि कारोबार की शुरुआत में आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उतार चढ़ाव से भरे सत्र के बीच दोनों सूचकांक करीब करीब सपाट स्तर पर बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 19 अंक यानी कि 0.03% की गिरावट के साथ 75,390 अंक पर जाकर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24 अंक यानी 0.11% नीचे आकर 22,932 पर आ गया. बीएसई के विस्तृत बाजार में आज मिड कैप में 0.63% की बढ़त देखी गई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.09% का नुकसान दर्ज हुआ.
India's benchmark stock indices BSE Sensex and NSE Nifty 50 jumped to hit new all-time highs today, propelled by domestic reasons such as the hope for favorable election results and international factors such as low crude oil prices and global market optimism. The Nifty 50 peaked at an intraday high of 23,110.8, while the Sensex surged to 76,009. The gains were led by strong performances in the banking and IT stocks, though the indices ended on a flat note in the volatile session after hitting record highs in the early part of the session. At lows, the Sensex was down 19 points or 0.03% at 75,390, and the Nifty was down 24 points or 0.11% at 22,932. In the broader market at the BSE, the mid-cap index increased by 0.63%, while the small-cap index fell 0.09%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 12 companies appreciated and 18 companies declined. IndusInd Bank rose 1.65%, Axis Bank gained 1%, and Bajaj Finance was up by 0.87%. On the other hand, Wipro dropped 2.36%, NTPC declined 1.4%, and Sun Pharma slipped 1.34%. In sectoral indices at the BSE, 9 sectors registered gains, 10 witnessed losses, while one sector had a flat day. Realty sector rose 0.76%, BankX sector gained 0.63%, and financial services added 0.51%. On the other hand, oil and gas sector fell 0.71% and commodities sector declined 0.61%. Consumer durables is the only one that ended nearly flat. The overall market breadth was negative as the shares of 1,650 companies advanced, 2,323 companies declined, and 132 companies remained unchanged.
और इस बीच हमारे साथ में दिल्ली से हमारे पहले श्रोता योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं. योगेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका प्रश्न पूछिए.
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और नमस्कार आप सभी को.
जी, प्रश्न,
मेरा सवाल रियल एस्टेट को लेकर के है कि रियल एस्टेट को लोग बहुत खरीदते हैं, तो क्या इसको हमें एक एसेट क्लास की तरह से देखना चाहिए, या फिर जो फ्लैट होते हैं खासतौर पर ये अक्सर डेप्रिशिएट करते हैं इस टाइम के बाद, तो क्या ये आप देखते हैं निवेश के तौर पर इनको एक सही विकल्प रहते हैं?
योगेश जी, निश्चित रूप से रियल एस्टेट को एक एसेट क्लास के तौर पे ही देखा जाएगा, और जब भी हम डायवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, विविधीकरण की बात करते हैं कि अलग अलग एसेट क्लास के बीच में आपका विविधीकरण होना चाहिए, तो उसमें रियल एस्टेट भी एक एसेट के तौर पे शामिल होता है. अब सवाल यह है कि क्या उसमें डिप्रिसिएशन होता है. ये एक आपने अनोखी बात पूछी है, क्योंकि आम धारणा यह है कि रियल एस्टेट में डिप्रिसिएशन नहीं होता है. हालांकि वास्तविकता यह है कि कीमतों में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन उसे आप डेप्रिसिएशन के रूप में नहीं देख सकते हैं. कीमतों में उतार चढ़ाव जो है वो मांग आपूर्ति के हिसाब से होता है, और रियल एस्टेट भी एक वोलेटाइल सेक्टर है आम धारणा के विपरीत, लेकिन हम उसे डेप्रिसिएशन कहें इस पर मुझे शक है. निश्चित रूप से आप निवेश के तौर पर इसे एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं, लेकिन आपको ओवरऑल अपना एक फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से देखना पड़ेगा कि आपके पूरे निवेश में इसका हिस्सा कितना होना चाहिए.
We have our next caller on the line, Bharat Bhushan from Delhi. आपका शो में स्वागत है, अपना सवाल पूछे प्लीज.
हाँ सर, नमस्कार.
नमस्कार,
मेरा प्रश्न ये है सर, दो हैं. एक तो पहले ये कि जो हमारे देश में बुलेट ट्रेन का जो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है सर, तो वो क्या इंडियन रेलवे जो है उसी तरह की सरे लाइनों में ही बुलेट ट्रेन का विस्तार होगा आने वाले 10 या 20 साल में? दूसरा सर, जो रिजर्व बैंक है हमारे देश की, तो भारतीय मुद्रा कोष जो हमारे देश का है सर, वो बहुत अच्छे स्थिति में है, तो क्या सर भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार उन विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल कैसे अपने देश के हित में करते? धन्यवाद
जी. देखिए भारत भूषण जी, बुलेट ट्रेन्स जब भी शुरू होंगी, काम ऑलरेडी चल रहा है इन पे, तो जब भी ये शुरू होंगी तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिहाज से और हमारे रेलवे की प्रगति के लिहाज से वो एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन होगा, और उसके बहुत अलग तरह के आर्थिक परिणाम सामने आएंगे जो आज शायद बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे हैं. लेकिन जब भी इस तरह की तरक्की होती है, कुछ लोग हमेशा संशय में रहते हैं. नई चीजें जब नई तकनीक आती है, लोग कहते हैं उस पर खर्चा बहुत हो रहा है, उसका क्या हमें फायदा मिलेगा. लेकिन आपको 10 साल बाद 20 साल बाद समझ में आता है कि अच्छा, इतना खर्चा हुआ तो उसका परिणाम क्या मिला. आप ज्यादा दूर न जाएं, आप यहीं दिल्ली में बैठे हैं, आप दिल्ली में मेट्रो को ही देख लीजिए. आज की तारीख में मेट्रो के बिना आप दिल्ली के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं. लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई होगी तब भी इस तरह का विमर्श हुआ होगा, इस तरह की डिस्कशन हुई होंगी कि अच्छा कितना फायदा है, कितना खर्चा लगेगा. इस तरह की बात हमेशा होती है, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है. जब भी कोई एक नया विकल्प चुना जाए तो उसके हर पहलू को देख करके, विमर्श करके तब नई चीजों को अपनाना चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है. लेकिन हमेशा देखा गया है कि जब नई तरक्की होती है तो उसका परिणाम हमें आगे चल करके देखने को मिलता है. आरबीआई की ओर से जो मुद्रा कोष के प्रबंधन का आपने प्रश्न पूछा है, देखिए विदेशी मुद्रा का अपने हाथ में होना बहुत तरह से जरूरी है. सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारा विदेशी व्यापार है वो पूरी तरह से इसी पर निर्भर होता है. हमारे देश की वित्तीय स्थिरता के लिए भी ये जरूरी होता है, तो इसलिए आरबीआई जो है वो हमेशा इस प्रयास में रहता है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और बढ़ता रहे।
रायगढ़ से अगले हमारे कॉलर हैं कुश। कुश जी, आपका प्रश्न क्या है?
जी नमस्कार सर।
जी नमस्कार, प्रश्न क्या है आपका?
सर मेरा दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा या शेयर मार्केट में? और रियल इस्टेट खास तौर पे मैं गांव की जमीन के संदर्भ में पूछना चाहता हूँ। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि घर भाड़े पे किराए पे रहना ठीक है या खरीद के, मतलब उसी पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके?
जी कुछ, दोनों सवाल आपके बहुत दिलचस्प हैं, इंटरेस्टिंग हैं। और पहला सवाल जो है रियल स्टेट या फिर शेयर बाजार, तो इसमें ये या वो ये प्रश्न नहीं होता है। प्रश्न ये होता है कि दोनों का हिस्सा आपके पूरे निवेश में, आपकी जो पूरी संपत्ति आप जोड़िए एक तरह से, उसमें आपके इन दोनों का हिस्सा कितना कितना होना चाहिए। आमतौर पर हर भारतीय के पास रियल स्टेट पहले से कुछ न कुछ होता है, जबकि शेयर बाजार की तरफ लोगों का रुझान कम होता है। तो इसलिए आपको बहुत सारे ऐसे परिवार मिल जाएंगे, आपकी स्थिति क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हो सकते हैं जहां पर उनका कोई न कोई अपना मकान होगा, कोई न कोई पुश्तैनी जमीनें होंगी, लेकिन शायद शेयरों में निवेश उनका शून्य होगा। तो शेयर जो है वो एक ऐसी संपत्ति है, फाइनेंशियल एसेट है, जिसकी तरफ लोगों को बढ़ना चाहिए। लेकिन रियल स्टेट भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो दोनों का एक सामंजस्य बनाना जरूरी है और वो आप अपनी पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से आप उस सामंजस्य तक पहुंचे, उसके लिए आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। रही बात किराए पर या अपना मकान खरीदना, तो ये काफी कुछ गुणा भाग जो है वो आप किस जगह पे हैं, वहां पे रियल स्टेट की कीमतें कैसी हैं, वहां पर किराए की स्थिति क्या है, इन सबको देख करके जोड़ा जा सकता है। हालांकि काफी लोग ये कहते हैं अब कि हाँ किराए पे रहना जो है वो ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है, लेकिन ये बात हर जगह सही हो ये जरूरी नहीं है।
सतीश वर्मा जी हैं दिल्ली से हमारे एक और श्रोता, इनसे हम बात करते हैं। हेलो सतीश जी।
जी नमस्कार सर।
जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है?
सर मेरे पास फिजिकल शेयर है जो मैं ट्रांसफर कराना चाहता हूँ, लेकिन ISIN नंबर नहीं मिल पा रहा है एक्सिस बैंक से। I have written number of times to the company and their financial advisor. तो मुझे कहाँ अप्रोच करना चाहिए?
जी
जी सतीश जी, सबसे पहले तो जिस कंपनी के शेयर आपके पास हैं आप उसके रजिस्ट्रार से संपर्क करें। उसके लिए आप अगर आप एक्सचेंजों की वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको उनके रजिस्ट्रार का नाम पता वगैरह मिल जाएगा, उनका ईमेल नंबर मिल जाएगा। आप उनके साथ संपर्क स्थापित करें और उनके सामने अपनी समस्या रखें, और अगर उससे भी बात नहीं सुलझती है तो अब आपकी मदद के लिए कुछ इस तरह की कंपनियां आ गई हैं जो इसी तरह के फिजिकल शेयर्स से जुड़ी अगर कोई समस्या है और उसे डीमैट कराने में या उसे ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत आती है तो उसका वो समाधान उपलब्ध कराती हैं। आप इसके बारे में अगर गूगल पे सर्च करें तो आपको वैसी कंपनियों के नाम मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा देख समझ के आप कंपनियों को चुनिएगा अगर आप उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं।
And now we have our next caller, Atanu Saha from Kolkata. Mr. Saha, welcome to the show. Please ask your question.
Good evening, sir. I, Atanu. And my first question is, what role of stock market inside a country? What role of stock market inside a country? And my second one, what contribution of national pension scheme inside stock market?
Yes. निश्चिता, स्टॉक मार्केट का रोल क्या है किसी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी देश की प्रगति में? तो देखिए, कहीं भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल जिससे आप तमाम अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें। मान लीजिए किसी को एक फैक्ट्री शुरू करनी है तो उसे पूंजी की जरूरत है, तो वो पूंजी आपको कई जगहों से मिल सकती है। आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल सकती है डेट के रूप में, लोन के रूप में, और आपको शेयर बाजार से मिल सकती है जहां आप पब्लिक से फंड रेजिंग कर सकते हैं, या पहले से जो कंपनियां चल रही हैं वो भी जब किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ती हैं, अपना एक्सपेंशन करना चाहती हैं, तो उन्हें बड़े अमाउंट में कैपिटल की जरूरत पड़ती है। और वो कैपिटल कहां से रेज होगा? या तो डेट से होगा या इक्विटी से होगा, यही दो मुख्य विकल्प हैं। तो इक्विटी के माध्यम से पूंजी उपलब्ध करा करके शेयर बाजार जो है वो देश की तरक्की में अपना योगदान करता है। और रही बात एनपीएस की, तो एनपीएस जैसा नाम से आप जानते हैं आप कि ये लोगों के पेंशन की पूंजी का प्रबंधन करता है, तो वहां पर एक कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाया जाता है जिसमें ज्यादातर पैसा डेट में रखा जाता है जिसमें एक सुनिश्चित रिटर्न मिले, लेकिन कुछ हिस्सा इक्विटी में भी लगाया जाता है और इसके लिए रेगुलेटर्स ने उन्हें अनुमति दी है, उनकी सीमाएं तय की हैं कि वो किस सीमा तक इक्विटी में पैसा लगा सकते हैं और इक्विटी में पैसा लगाते समय क्या उन्हें ध्यान रखना है, मतलब इक्विटी में हर जगह नहीं लगा सकते, उन्हें कुछ खास उनके लिए नियम तय किए गए हैं, तो उन सब के आधार पर वो एक सीमित मात्रा में इक्विटी में पैसा लगाते हैं जिससे जो एनपीएस के धारक हैं उनका रिटर्न, उनको जो पैसा मिलने वाला है अंत में वो थोड़ा सा ज्यादा हो सके.
And I would like to repeat the caller numbers for all our listeners. The numbers are 2331-4444 and 2342-1050. Let me repeat these numbers. 2331-4444 or 2342-1050. And we have our next caller joining us from Chennai, Mr. Raja. Mr. Raja, you're welcome to the show. Please ask your question to our expert.
Good evening, sir. I'm Raja from Chennai, sir.
Good evening.
I have a very basic question of booking profit in equity or mutual fund, whatever it is, sir. Like, for example, I purchased a share of share for 1,000 rupees, 10 shares of each 100 rupees. So, 1,000 rupees I purchased. Now, today I am running a profit of, say, 1,200 rupees. That means 120 per share. When I book the profit, should I, option one, should I sell all of them and take the 200 rupees profit? Number two option, yeah, should I sell only for the 200 rupees profit amount and the balance keep it with me? How to do, go about this profit booking, sir? This actually I'm confused, sir. Yeah, should I sell, I already told you, please share and sell it and keep the profit. Right.
Right. Mr. Raja, when you want to book profits, there are a number of things you have to consider. Firstly, do you require that money right now? I mean, whatever you have invested in a particular share or your overall portfolio, you must have set a goal, a financial goal. And then you have to think whether your financial goal is very close, is it within 1 or 2 years time frame, then probably you can think of profit booking. Second is, it may depend on the performance of the individual stock. If you think that the stock has already run up in a huge amount and from here onward you expect that it may not go up further, then you can think of profit booking. So there are many things you have to consider before taking such a decision.
और श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले रुपए पर नजर डालें तो विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83.13 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. विश्व की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में गिरावट के साथ 104.65 पर कारोबार कर रहा था. मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं केसी शुक्ला जी. केसी शुक्ला जी, कार्यक्रम में स्वागत है, आपका प्रश्न पूछिए.
जी नमस्कार. मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि स्टॉक मार्केट का जो नया नया रूल आता है उसके विषय में सही या लेटेस्ट जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि जो ऑप्शनल ट्रेडिंग है बायर और सेलर का, इसमें विनिंग पॉइंट के आधार पे बायर को हमेशा लॉस ही होता है क्या?
जी शुक्ला जी, बाजार के नए नए नियम जो है वो आपको जो रेगुलेटर हैं उनके माध्यम से ही मिलते हैं, और रेगुलेटर जब कोई नया नियम लाते हैं तो मीडिया में भी उसकी खबरें आती हैं. तो आपके सामने सूचनाओं के दो स्रोत हैं, प्राइमरी सोर्स रेगुलेटर खुद यानी सेबी या स्टॉक एक्सचेंजेज जो क्वासी रेगुलेटर कहे जाते हैं. तो बाजार में अगर कोई नया नियम बनता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले तो आपको रेगुलेटर से मिलेगी, उसके बाद जब भी रेगुलेटर कोई नया नियम बनाएंगे तो उसकी खबर आपको मीडिया में मिलेगी. तो नए नियम जानने का तो साधन आपके पास यही है. आपने ऑप्शनल मतलब ऑप्शन कारोबार के बारे में कुछ पूछना चाहा है जो आपका सवाल बहुत क्लियर नहीं है, बहुत स्पष्ट नहीं है. शायद आप ये समझना चाहते हैं कि क्या हमेशा ऑप्शन बेचने वाले या ऑप्शन खरीदने वाले दोनों में से किसको फायदा होता है. तो ऐसा कोई स्थापित नियम नहीं है, कोई सेट रूल नहीं है कि ऑप्शन बेचने वाले ही जीतेंगे या ऑप्शन खरीदने वाले ही जीतेंगे। ये हमेशा इस पर निर्भर करता है कि आपने किस रणनीति के तहत किस समय किन बाजार स्थितियों में ऑप्शन खरीदा या बेचा है।
And for all our listeners, here's a little update on the Asian and the European markets. So the Asian share indices traded in green today. South Korea's Kospi climbed 1.3%. Hong Kong's Hang Seng rose 1.16%. China's Shanghai Composite Index added 1.13%. Japan's Nikkei 225 gained 0.65%. And Singapore's Straits Times was flat. European share markets were mixed in intraday trade. London's FTSE 100 slipped 0.26%, while France's CAC added 0.13%, and Germany's DAX was marginally higher. We have our next caller to the show, Mr. Sunil Mishra from Mumbai. Sunil ji, aapka show mein swagat hai. Please apna sawal poochhe.
Ji, namaskar. Mera question ye hai ki इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वॉर्स वगैरह हो रहे हैं, यू नो बोथ मिडिल ईस्ट एंड अदर कंट्रीज में भी काफी अनसर्टेनिटीज हैं। आई एम श्योर इसका इफेक्ट मार्केट पे डेफिनेटली आ रहा है। इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स में ट्रेंड्स किस तरफ होंगे मार्केट्स के विद रेस्पेक्ट टू एनी स्पेसिफिक डोमेन सेक्टर जहां पे आपको लगता है कि कोई चीज ज्यादा बूम होगी या कोई चीज कुछ ज्यादा इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा?
जी मिस्टर जी, मुझे जितना समय याद आ रहा है अपने पत्रकारिता के एक्टिव वर्षों के बीच में, शायद ही ऐसा कोई समय रहा हो जब दुनिया में कहीं न कहीं कोई तनाव, कहीं न कहीं कुछ कन्फ्लिक्ट सुनने को नहीं मिला हो। जो जियोपॉलिटिकल रिस्क की हम बात करते हैं बाजार में, ये चर्चाएं हमेशा होती हैं और हर समय कुछ न कुछ कहीं न कहीं कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसे लेकर के डर लगता है, और कभी वो डर अचानक से इतना बड़ा हो जाता है कि उसके चलते हमें बाजार में बहुत उठापटक देखने को मिलती है। अगर ताजा उदाहरण लें तो जब यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण कर दिया, उसके तुरंत बाद हमें सारी दुनिया में और सारी दुनिया के बाजारों में काफी उथल पुथल देखने को मिली। उसका असर हमें कमोडिटी भावों में देखने को मिला, इक्विटी बाजारों में देखने को मिला, लेकिन आज की तारीख में भी आप वही रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ देखते हैं। कभी खार्की को लेकर के कोई खबर आती है, कभी कुछ अभी मध्यपूर्व कह लें या पश्चिमी एशिया कहें, वो हमारे लिए बेहतर शब्द है, पश्चिमी एशिया में तनाव की तमाम खबरें आती रहती हैं, वो भी आप सुनते रहते हैं, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि बाजार उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। तो बाजार हमेशा ये देखता है कि उसके लिए क्या प्राइस प्वाइंट कहीं पर फ्लक्चुएट होने वाले हैं जो भी तनाव हो रहा है उसकी वजह से। जैसे यदि कोई ऐसी घटना हो जाए जिसके चलते कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने लगे तो निश्चित रूप से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन कहीं कुछ बयानबाजियां चल रही हैं लेकिन तेल की आपूर्ति सामान्य है तो फिर कीमतों पर असर नहीं होगा। अगर आप अपने बाजार को अगले 5 साल के लिए देखना चाहते हैं तो आपके लिए सोचने का विषय यह है कि अगले 5 साल में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी। क्या जो एक मोटा मोटा अनुमान हम लेकर के चल रहे हैं कि 7%, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, इस तरह की एक ग्रोथ रेट, इस तरह की एक विकास दर हम लेकर के चल पाएंगे अगले 5 साल में, अगर ये भरोसा बना हुआ है तो जिस तरह का बाजार हम अभी तक चलता हुआ देखते रहे हैं लगभग उसी तरह से चलता रहेगा। क्योंकि अंततः जो है शेयरों की कीमतें हैं वो कंपनियों को जितना मुनाफा हो रहा है, जिसे हम अर्निंग्स कहते हैं मार्केट की टर्मिनोलॉजी में, अर्निंग्स का गुलाम है शेयरों के भाव।
और हरियाणा से संजय हमारे साथ हैं। संजय जी, आपका प्रश्न क्या है?
नमस्कार सर, मैं सीधा बात कर रहा हूँ
जी।
सर मेरे दो सवाल है
जी, पूछिए।
सवाल तो ये है कि अगर शेयर मार्केट में कोई साधारण व्यक्ति जुटना चाहे, शेयर मार्केट से पैसे वगैरह बनाना चाहे, तो उसके लिए कैसे मतलब संभव है? जिस बिल्कुल भी शेयर बाजार वगैरह की जानकारी नहीं, वो अगर घुसने इसमें कुछ करना चाहे, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहे तो क्या तरीका है? और दूसरा सवाल मेरा ये है, ये शेयर असल में स्थिर भी क्या है? मतलब शेयर कभी कभी इसलिए माफ करे कुछ शेयर से 50 पैसे का शेयर, कभी कभार सुनने में आता है कि 30-40 शेयर है इंडस्ट्री में और इसमें 50 या 200 डीएससी में, ये सब शेयर असल में है क्या? और इसमें हम कैसे बना सकते हैं चाहे तो साधन?
संजय जी, आपका जो पहला सवाल है कि एक सामान्य व्यक्ति जिसे शेयरों की बहुत जानकारी नहीं है वो इस बाजार का फायदा कैसे उठाए, मैं आपको एक बहुत ही साधारण सा और आसान तरीका बताता हूं। आप निफ्टी या सेंसेक्स को फॉलो करने वाले इंडेक्स फंड, तमाम म्यूचुअल फंड हैं वो सभी इस तरह के इंडेक्स फंड आपको उपलब्ध कराते हैं, आप उनमें एसआईपी के जरिए निवेश करें। आप इन सारी चीजों को ध्यान दीजिए, इंडेक्स फंड, सेंसेक्स या निफ्टी के एसआईपी के माध्यम से आपको उसमें पैसा लगाना है। ये बात आप किसी भी अपने आसपास के फाइनेंशियल एडवाइजर को जाके बताइए कि मुझे राजीव जी ने ये कहा है, मुझे इसको फॉलो करवाइए। आगे वो खुद आपको बता देंगे कैसे करना है। और अगर संभव हो तो आप डायरेक्ट प्लान में जाइए, लेकिन शायद आपके लिए एडवाइजर के माध्यम से जाना बेहतर होगा।
And talking about the oil prices steadied in Asian trading on Monday as markets awaited an OPEC plus meeting on June the 2nd, where producers are expected to discuss maintaining voluntary output cuts for the rest of the year. The Brent crude was up 0.27%, $82.36 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate WTI crude future rose 0.30% to $77.97 per barrel. And we have our next caller, Rajiv Ji from Delhi. Rajiv Ji, aapka swagat hai. Please apna sawal karein.
Hello. Sir, mera ek question ye tha, jo share humare DMAT mein padhe hain, jaise Divan Housing ka padha hua hai aur ab wo listed nahi hai, lekin wo humare record mein dikhata rehta hai. तो इसको हम कैसे इसको हटा सकते हैं अपनी लिस्ट से?
जी राजीव जी, अब चूंकि वो लिस्टेड नहीं है तो आप उसमें शायद आपके पास बहुत कम विकल्प बचे हैं, ज्यादा कुछ आप उसमें कर नहीं सकते, क्योंकि अनलिस्टेड शेयरों का जो बाजार है वो काफी अव्यवस्थित है। मतलब उसका कोई आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप जाएं और वहां पर अपने शेयर को बेच सकें, तो वो आपके पास अभी पड़े रहेंगे। अगर कभी जिस कंपनी का आपने नाम लिया या ऐसा कोई भी दूसरा नाम है, तो अगर कभी उसकी किस्मत बदली, कभी उसमें कुछ गतिविधियां शुरू हुई, कभी कुछ हुआ, अभी तो आप मान लीजिए कि बस आपके सामने एक बुक एंट्री पड़ी है जिसका कोई महत्व नहीं है।
एक और श्रोता जयपुर से जितेंद्र है। जितेंद्र जी, जल्दी से आपका प्रश्न पूछिए।
हाँ हाँ, जैसे सर जो मार्केट अभी जो हाई पकड़ा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और दूसरा कि क्या इसमें अगर कुछ प्रॉफिट बुक करे क्या, जो हाई पे है और जो लो पे है उसको परचेज करे क्या?
जी राजीव जी,
जितेंद्र जी, ये हमेशा एक निवेशक की दुविधा रहती है या कारोबारी की दुविधा रहती है, क्या खरीदें क्या बेचें। बेशक बाजार इस समय काफी ऊंचाइयों पर है, लेकिन बिना वजह भी नहीं है। उसके सामने कुछ न कुछ अगर बाजार को सामने दिख रहा है, उसके आधार पर ही एक महत्वपूर्ण इवेंट से पहले वो इतनी ऊंचाइयों पर है, रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर है, तो ऐसे में आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुनाफा वसूली करेंगे तो आपके सामने एक रिस्क है कि बाजार यहां से और बढ़ जाए तो क्या होगा, फिर आप कहीं ना कहीं आपकी बस छूट जाएगी। तो मुनाफा वसूली करने का निर्णय आप बाजार को देख करके नहीं, अपने शेयर को देख करके करें, अपने पोर्टफोलियो को देख करके करें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को देख करके करें।
यानी राजीव जी, हम ये कह सकते हैं कि अभी जो बढ़त चल रही है, इस बढ़त का लाभ लेना लोगों के लिए सही रहेगा?
देखिए, कभी भी आप बाजार बहुत बढ़ चुका है इसलिए आप बेचें, ये निर्णय गलत हो जाता है।
जी।
बाजार बहुत घट चुका है या और घटेगा इस दर में हम बेच लें, ये निर्णय भी गलत हो जाता है। आप मार्केट टाइमिंग को मत देखिए, आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक बैलेंस बना करके रखिए, एसेट एलोकेशन ठीक से करिए। ये सब शब्द सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगते हैं, लेकिन रास्ता वही होता है। इन चीजों को समझना पड़ेगा कि ये चीजें क्या हैं और कैसे की जाती हैं।
चलिए, अब अंतिम खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में वायदा कारोबार के लिए सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। इस कीमती धातु का वायदा मूल्य 501 रुपए की तेजी के साथ 71,757 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज किया गया। जुलाई के अनुबंध के लिए चांदी 1,612 रुपए ऊपर चढ़कर 92,160 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिन के कारोबार के दौरान सोना 0.50% के लाभ के साथ $2,368 प्रति औंस के स्तर पर रहा। चांदी भी बढ़त के साथ 1.89% ऊपर आकर $31.08 प्रति औंस के स्तर पर रही। राजीव जी, कार्यक्रम में आप आए, हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद आपका।
एंड टू ऑल आवर लिसनर्स, बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। Sensex and Nifty hit new all-time highs. Nifty peaked at an intraday high of 23,110, while Sensex surged to 76,009. Gold and silver in domestic and international markets trade positive. Gold was up by 501 rupees. And crude markets await OPEC Plus meeting on the 2nd of June. Brent crude was up 0.27% to $82.36 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
Namaskar. Market.
सकता।